मुश्किल अल्फाज की वजाहत और उनके मादाजात रूट्स, सूरत सबा आयत नंबर 31। इसमें आप देखें तो यहां पर जो है आयत नंबर 31, 31 जो आयत है इसके दरमियान में लफ्ज आया है बिल्लाजी का, और स्टार्ट में भी आगाज में भी वकालल्लाजीना, तो शुरू में भी अल्लाजीना है और आगे बिल्लाजी है, तो इसको इसे मौसूल कहते हैं। किसी नाम की जगह पे ये इस्तेमाल होता है, जैसे इंग्लिश में भी जैसे खालिद है, असलम है, नजमा है, तो अगर आप दोबारा उसका जिक्र करेंगे तो आप ही और शी कहते हैं, एक दफा नाम लेके फिर ही और शी कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह अरबी का भी ये तरीका है कि फिर जो है वो नाम की बजाय या खास तौर पर उनका जिक्र करने की बजाय फिर जो है वो अल्लाह जी और अल्लाह जीना इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह जी वाहिद है, अल्लाह जीना जमा है, और ये क्या करता है कि ये दो जुमलों को या आप दो जुमलों को आपस में मिलाता है या पिछली बात से फिर रब कायम करता है। फिर आप देखिए कि यहां पर जो है यदई ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यदई ही, तो ये भी आप पढ़ ही चुकी हैं कि असल में यद एक हाथ को कहते हैं और यदैन जो है ये दो हाथ हैं, यदैन दो हाथ हैं, और यदैन दो हाथ है तो यद एक को कहते हैं, यदैन दो को कहते हैं। फिर तस्निया का नून जो है वो गिर चुका है, और जो बैना आया है, बैना सामने के लिए भी आता है, दरमियान के लिए भी इस्तेमाल होता है। मौकूफूना, मौकूफूना इसका मादा क्या है, रूट क्या है? शाबाश, इसका रूट है वौकाफा और वक्फ करना, और यहां पे मौकूफून ये इस्तेमाल हुआ है, और इससे मुराद है खड़े हुए। यानी जैसे आप कहती हैं कि फलां मामला तो मैंने मौकूफ कर रखा है, उसको ठहरा दिया है, अभी मैं उस मामले में बात नहीं करना चाहती, जैसे मैंने उसको रोक दिया, तो मौकूफ वाहिद है और मौकूफून इसकी जमा है और वक्त से है, जिसका मतलब होता है खड़े होना या रुके हुए होना। यजु इसका रूट क्या है? राजीम, राजीम आयन। आप देखें, हाँ आप देखें तो कभी भी आयन गिरती नहीं है, है ना, तो आयन आप इसको हटा नहीं सकती। यरजेउ राजीम आयन इसका रूट है, रुजू करना, लौटना, रुजू करना, इसी से राजे है, इसी से रुजू है, इसी से तुरजाउन है। फिर है आयत नंबर 31 में लफ्ज इस्तुदइफू, इसका मादा या रूट क्या है? द्वाद अनफा, और ये जो है ये ज़ईफ कमजोर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे भी गरीब और अवाम जो के सरदारों और सरमायादारों और अमीरों की निस्बत छोटे थे उनके लिए, यहाँ पे आप देखें इस्तुदइफू जो है इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे इसका ऑपोजिट इस तक बरू आया है, तो इस तक बरू जो है ये सरमायादार लीडर और सरदार हैं, जबकि इस तुदेफू जो है ये कमजोर लोग हैं। आयत नंबर 32, 32, अब इसमें भी इस तक बरू जो है आया है, तो इसका ऑपोजिट इसमें क्या आया है, मुतजाद क्या है? इस तक बरू का ऑपोजिट क्या है? इस तो देफू, शाबाश, इस तो देफू। यहाँ पे आ जो आया है ना, नहनू, आ जो है ये हमजा इस्तफाम है, हमजा इस्तफाम जो है ये सवाल के लिए होता है, कोई सवाल पूछना, जैसे इस्तफाम फहम हासिल करना, सवाल पूछना, तो क्या ऐसे कर ले या इस तरह सवालिया है, तो हमजा इस्तफाम है, लेकिन यहाँ पे ये बाज मुफस्सरीन की राय है कि ये नहीं के मानी दे रहा है, तो कहेंगे हमजा इस्तफाम इनकारी। सदद नाकुम, स्वाद दाल दाल, और ये लाजिम और मुतद्दी है, रुकना और रोकना, और मैं आपको बता चुकी हूं कि लाजिम और मुतदी किसे कहते हैं कि जिसमें फाइल का असर जो है मफूल पर भी जो है वो पहुंचे, यानी फाइल का जो फेल है उसके फेल का असर जो है वो मफूल को भी हो। जैसे जो है वो अगर आप खाना खाती हैं तो खाने का असर तो सिर्फ आप तक है, लेकिन नेकी के काम से अगर कोई किसी को रोकता है तो खुद रुकता है कि दूसरे को रोकता है ना, तो इसको कहते हैं कि ये जो है ये मुतद्दी है। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 33 है 33। अब आप बताइए इस्तुद एफू, इसका ओपोजिट इसका मुतलाद यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है, कौन बताए?
इस्तकबरू।
हाँ इस्तकबरू कहेंगे, शाबाश इस्तकबरू। देखिए बार बार आ रहा है यहाँ पे, तो इस्तकबरू से मुराद हो अवाम गरीब और कमजोर लोग हैं, जबकि इस्तकबरू से मुराद अमीर सरदार सरमायादार लीडर वो लोग हैं। यहाँ पे जो है वो मकर का लफ्ज जो है ये अहम है, मकर नीम काफ रा मकर, और ये लफ्ज इस्तेमाल होता है तदबीर के लिए। और यूं देखें तो तदबीर के लिए जो है वो कई लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, जैसे आप देखें कि तदबीर के लिए एक है दुबर, किसी चीज के पिछले हिस्से को दुबर कहते हैं ना, तो इसी से तदबीर करना, किसी काम के अंजाम पर नजर रखकर गौर व फिक्र करना। आप किसी मामले पर गौर व फिक्र करते हैं तो उसकी बैक पर जो आपको नजर नहीं आ रहा होता, तो आप उस पर गौर व फिक्र करते हैं, तो उसके लिए तदबीर गौर व फिक्र तदबीर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी काम का अंजाम जो है उसको सामने रखकर गौर व फिक्र करना। दूसरा लफ्ज है कैद का, कैद जो है ये खुफिया तदबीर को कहते हैं, किसी काम को सर अंजाम देने के लिए खुफिया तदबीर करना, दौ या चाल चलना। और ये जो कैद का लफ्ज है ये किसी नेक काम की तदबीर भी हो सकती है और किसी बुरे काम की भी हो सकती है, जैसे नेक काम के लिए मिसाल है सूरत यूसुफ की आयत 76, कजालिका किदना ले यूसुफ, इस तरह हमने यूसुफ के लिए ये तदबीर की कि मिस्र के तख्त पर पहुंचाने के लिए अल्लाह ने क्या किया। और अगर इसको बुरे के लिए इस्तेमाल करना हो तो जैसे फाइन काना लकुम कैदुन फकीदून, तो ये सूरत नंबर 77 है आयत नंबर 39 है। फिर इसके बाद तीसरा लफ्ज जो तदबीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है मकर का, जो अभी हम पढ़ भी रहे हैं, जो आयत नंबर 33 सूरत सबा में है मकर। और इसका मानी होता है मकर का कि किसी काम को सर अंजाम देने के लिए हीला जोगी करना, धोखा करना। अच्छा ये लफ्ज जो है ये अच्छे मकसद के लिए भी इस्तेमाल होता है और बुरे मकसद के लिए भी, लेकिन याद रखें कि मकर का लफ्ज जो है वो अक्सर ज्यादातर बुरे मफहूम में आता है, फरेब मकार और बदनीयत हीलाबाज, जो कि हीलों के जरिए किसी को उसके मकसद से हटा देते हैं, जैसे आप सूरत आल इमरान में पढ़ चुकी हैं व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और यहां पे भी बल मकरुल लैली वन नहार, तो मकर का मानी आपको पता चल गया कि किसी काम को सर अंजाम देने के लिए धोखा देना। अल्लेल वन नहार ये दोनों एक दूसरे के मुतजाद हैं, अल्लेल का लफ्ज जो है वो 24 घंटों पर इस्तेमाल होता है, रात और दिन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वैसे रात को कहते हैं, और वन नहार जो है नून हारा ये दिन के लिए इस्तेमाल होता है। और फिर इसके बाद लफ्ज है अंदादन, अंदादन, और अंदादन का जो लफ्ज है इसका रूट क्या है?
नून दाल दाल,
नून दाल दाल, और इसके मानी होते हैं पुकारना। अब आप देखें कि पुकारने के लिए कुरान में वैसे 5 लफ्ज आए हैं, एक दुआ का है, दूसरा नादा, तीसरा अज़ाना, चौथा इब्तहला, और पांचवा जहर का है, लेकिन अभी हम दो को सामने रखकर समझते हैं। जैसे दुआ और निदा। अब आप देखें कि दुआ और निदा दोनों अल्फाज करीबुल मानी हैं, लेकिन दुआ का लफ्ज जो है वो निदा की बजाय जो है वो खास है। दुआ का लफ्ज निदा की बजाय खास है। अब मैं आपको बताती हूं कि दुआ में और निदा में दोनों में क्या फर्क पाया जाता है, ये आप नोट कर लीजिए। नंबर एक, दुआ के मानी होते हैं महज पुकारना। दुआ का रूट आपको आता है ना, दाल आइन वो, दाल आइन वो, शाबाश। तो दुआ के मानी होते हैं महज पुकारना, और निदा जो है अमूमन बुलंद आवाज से पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि जैसे अगर आप किसी को आवाज देती हैं तो वो लंबे फासले पर है, वो दूर के फासले पर है, तो फितरी सी बात है कि आपको उसको उसके लिए आपको बुलंद आवाज से पुकारना पड़ेगा। आप दुआ मांगती हैं, दुआ हम अल्लाह से मांगते हैं, तो हम तो आहिस्ता आहिस्ता भी मांगते हैं तो अल्लाह सुनता है ना। तो ये फर्क तो याद करना मुश्किल नहीं, आसान है कि दुआ महज पुकारना और निदा जो है वो बुलंद आवाज से पुकारना। इसी तरह मुनादा करना या मुनादी की, आम मुनादी की है ना, तो ढंडोरची के लिए भी मुनादा का लफ्ज आता है, ऐलान करने वाले के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर दो, दुआ जो है उसमें जो भी आप दुआ मांग रही हैं या जो आपका कलाम है उसका बामानी होना जरूरी है, कि आप जो अल्फाज अदा कर रही हैं वो बामानी हो, जबकि निदा जो है बामानी भी हो सकती है बेमानी भी हो सकती है। मसलन चरवाहा जो है जब वो जानवरों को पुकारता है तो वो तो डिफरेंट आवाजें निकालता है, जानवर जो है वो चरवाहे की आवाज को समझते तो नहीं है ना, उस आवाज सुनते हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि चरवाहा क्या कह रहा है, वो कुछ भी दग 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 या मुख्तलिफ तरीके से आवाज निकालते हैं और अपनी बकरियों और गाय और जो भेड़े हैं रेवड़ है उनको वो हांकते चले जाते हैं। तो दुआ जो है उसका कलाम हम मानी होना जरूरी है, जबकि निदा जो है बामानी भी हो सकता है बेमानी भी। तो दुआ का कलाम बामानी होना जरूरी है और निदा जो है बामानी भी और बेमानी भी हो सकता है। और कभी कभी निदा का लफ्ज चिल्लाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे चरवाहा बकरियों पर चिल्लाता है। और तीसरी अहम बात है कि दुआ में किसी को मुखातिब करना जरूरी है, निदा में मुनादा का नाम लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि चरवाहा जब बकरियों को जो है वो हांकता है तो उनका नाम तो नहीं लेता, ऐसे ही बस वो आवाजें निकाल रहा होता है। लेकिन दुआ में हम अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे होते हैं और उस वक्त हम क्या कहते हैं कि या खालिकु या मालिकु, और वैसे भी दुआ यानी आम भी हो सकता है कि किसी को आप बुलाकर कोई बात कह रहे हैं, आप दावत करते हैं है ना, आप किसी को बुलाते हैं ना जिसको दावत करते हैं, तो उस किसी को मुखातिब करते हैं। इसी तरह आप दावा का काम करते हैं उसका रूट भी यही है, तो आप फिर उसको मुखातिब करते हैं। निदा का लफ्ज कुरान में अजान के मानों में भी इस्तेमाल हुआ है, आप सूरह जुमा में पढ़ेंगी आयत नंबर 9 में। तो बहरहाल यहाँ पे अंदादन है, और अंदादन जो है ये निद की जमा है, उन शरीकों को कहते हैं जिनको मुश्रिक जो थे वो पुकारा करते थे। अगला अहम लफ्ज है आयत नंबर 33 में, अंदादन के बाद है वह असर्रु। वह असर्रु जो है इसका रूट क्या है,
सीन रा,
शाबाश। इसका रूट है, इसका मादा है सीन रा रा। इसके मानी है, इसके एक मानी तो होते हैं खुश होना, खुशहाली के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, सर्रा या सुरू खुश लगना, और सुरूर जो है वो एक खुशी के लिए इस्तेमाल होता है, सर्राई दर्राई, तो सर्राई भी आता है खुशहाली, दर्राई तंगी के लिए आता है, शरीर, शरीर जो है वो तख्त को भी कहते हैं ना, आप बेड पर चारपाई पर लेट जाते हैं, तख्त पर लेट जाते हैं तो बड़ा सुरूर आता है, बड़ा अच्छा लगता है ना, जब अब अपने कंधे अपनी कमर अपनी गर्दन जो है सर अपना जिस्म जो है वो बिस्तर के साथ चारपाई पर तख्त पर लगता है तो तब एक सुरूर आता है, तो शरीर का रूट भी वही है। एट द सेम टाइम सीन रा रा जो है ये छुपाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। सिर भेद को कहते हैं, असर्रा युसिर्रु, छुपाना, सिर भेद, इसी तरह जाहिर करना। और यहां पर वह असर्रु और वो छुपाएंगे, अन्नदामता, नदामत को। नदामत जो है इसका मादा क्या है?
नून दाल मीम।
शाबाश, आपने बिल्कुल दुरुस्त बताया, नून दाल मीम इसका मादा है। और इसके मानी है नून दाल मीम के पछताना। पछताना, अब आप देखें कि पछताने के लिए कुरान में एक तो नदमा आया है, दूसरा हसरा आया है, हसरा हसरत करना, और तीसरा लफ्ज है सोकेता फी यदे, ये मुहावरा है कि अपना सा मुंह लेकर रह जाना। तो जो नदमा है इसके मानी है अपने किए हुए किसी बुरे फेल पर पशेमान होना, इसका आम इस्तेमाल होता है। नदामत, नादिम, तो यहाँ पे जो है वो कयामत के दिन जो है लोग अपने बुरे आमाल पर पछताएंगे, ये बताया जा रहा है। राहू, इसका रूट क्या है?
राह
शाबाश, रा हमजा या, रा देखने के लिए कहते हैं। अल अगलाल, अल अगलाल जो है ये गुल की जमा है, इसका मादा है, शाबाश, गैन लाम लाम इसका मादा है। और किसी चीज को अपने ऊपर ओढ़ लेना, उसके अंदर घुसना, और जो है ये अल अगलाल का लफ्ज जो है चेन, जंजीरों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये लफ्ज मादी और हिस्सी दोनों तरह इस्तेमाल होता है। मादी से मुराद जैसे आपने कभी किसी मुजरिम के हाथों में अगर हथकड़ी लगी हुई देखी हो तो उसको भी अलगलाल कहते हैं, आप आंखों से देख रहे होते हैं ना। अच्छा, बाज लोगों के दिलों को जंजीर पड़ी हुई होती है, चेन, उनके दिल के अंदर जो है वो गिल होता है, और वो हसद का गिल हो सकता है, वो किबर का गिल हो सकता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उनके दिल साफ नहीं होते, उनके मामला साफ नहीं होते, वो किसी के आगे झुकते नहीं है, किसी को माफ नहीं करते, किसी से माफी नहीं मांगते, क्योंकि दिल जो है वो नफरत के साथ जकड़े हुए है ना, उसकी जंजीर है। अब नफरत की, हसद की, कीना की, कुदूरत की, तकबुर की ये जंजीर नजर तो नहीं आती, लेकिन ये जंजीर भी है, तो ये हिस्सी जंजीर कहलाती है। इसी तरह लोहे के कॉलर होते हैं जो कि मुजरिम को पहना दिए जाते हैं ताकि वो गर्दन को झुका ना सके। बाज हथकड़ियां या बाज जंजीरें ऐसी होती है जिसमें मुजरिम को गर्दन में भी जंजीर पहनाई हुई होती है, हाथों में भी और पांव में भी, अगर आपने कभी देखा हो तो। उन सब के लिए ये अल अगला लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और आनाक, आयन नून काफ उनुक वाहिद है और आनाक जमा है, ये गर्दन के लिए इस्तेमाल होता है। आयत नंबर 34 है, इसमें लफ्ज है करियातिन का। करियतिन इसका मादा है, शाबाश, काफ रा या इसका मादा है, और ये शहर और बस्ती को कहते हैं, और इसकी जमा है कुरा। उमुल कुरा किस बस्ती को कहते हैं? मक्का को कहते हैं, शाबाश। उमुल कुरा जो है बस्तियों की मां, मक्का के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुतरफूहा, मुतरफूहा इसका मादा है, शाबाश, इसका मादा है ता रा फा, और इसकी मुतरफ वाहिद है और मुतरफीन जो है ये जमा है, और इसके मानी होते हैं ऐशो आराम की फरावानी, नेमतों की कसरत। मुतरिफ वो शख्स होता है जो मालो दौलत की कसरत की वजह से, जो असूदा हाली की वजह से जो बदमस्त हो जाए, उसके नशे में गर्क हो जाए, तो मुतरफीन उसको कहा जाता है। वैसे तो कुरान में इसका पहला दर्जा अनामा का है, दूसरा खव्वाला का है, اور تیسرا درجہ مترفین کا ہے، چوتھا غنی کا ہے، اور پانچواں جو ہے وہ اقنا کا ہے. اموالا و اولادا، تو اموال جو ہے اس کا مادہ کیا ہے؟ شاباش، آپ نے بالکل درست بتایا کہ مال واحد ہے، اموال اس کی جمع ہے، اور اس کا مادہ ہے میم و لام، اور مال و دولت کو کہتے ہیں. اور مال و دولت ہر طرح کی ہو سکتی ہے، زیور بھی، پیسہ بھی، گھر بھی، فیکٹری بھی، جائیداد بھی، اوزار بھی، اور گاڑی بھی، زمین بھی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اولاد جو ہے اس کا مادہ کیا ہے؟ شاباش، و لام دال اس کا مادہ ہے، ولد، اور یہ لفظ اسم جنس سے استعمال ہوتا ہے، اور اولاد اس کی جمع ہے. یہاں پر یبسطو آیت نمبر 36 میں آیا ہے، یبسطو با سین توا اس کا مادہ ہے، اور با سین توا جو ہے اس کے معنی ہے کھلا ہونا، وسعت کے لیے، وسعت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، پھیلنا، کھولنا، پھیلانا، کھولنا، اور فراخی. باسط اللہ تعالی کا نام بھی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالی کی صفت ہے کہ وہ جو ہے وہ کھلا دینے والا ہے، اور پھیلانے کے لیے اگر آپ دیکھیں قرآن میں 6 لفظ آئے ہیں، اور اس میں پانچواں درجہ بساطہ کا ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کو کھولنا، پھیلانا، وسیع کرنا. بساط وسیع زمین کو بھی کہتے ہیں جس میں وسعت ہوتی ہے. اور بساطہ کا جو اپوزٹ ہے یہ قبض بھی ہے اور قدر بھی ہے، قرآن میں یہ اپوزٹ بھی استعمال ہوئے ہیں. اور رزق کا لفظ ہے، یہی اس کا مادہ ہے، رازاقا. اور رزق سے مراد ہمارے ہاں عام طور پہ کھانے پینے کی چیزیں مراد لی جاتی ہیں، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ ہر طرح کی نعمت ہے، عقل بھی ہے، علم بھی ہے، دولت بھی ہے، اور اولاد بھی ہے، اور کھانے پینے کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی اس سے مراد ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ یبسطو کا پھر اپوزٹ یہاں پہ یقدرو آیا ہے نا، تو یہ کمی کے لیے استعمال کیا گیا ہے. آیت نمبر 37 ہے، 37، اور اس میں جو ہے وہ تقربکم اور زلفا، یہ دو اہم لفظ ہیں، تقربکم اور زلفا. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ دونوں لفظ نزدیک کے معنی دیتے ہیں، نزدیک کے. اس میں قرآن میں نزدیک کے لیے 7 لفظ آئے ہیں، اور پہلا درجہ ہے قادہ، یہ قادو، یہ کسی کام کے کرنے کے قریب ہونا، کام کے کرنے پر آمادہ ہونا. دوسرا ہے قرب، قریب سے، نزدیک ہونا، اس کا عام استعمال ہوتا ہے، فاصلہ، مدت، نسب، منزلت، سب چیزوں کے لیے، اور یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، جیسے فاصلے سے قریب ہو، یا پھر جو ہے وہ نسب کسی کے قریب ہو. لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا، یہ جو ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 106 میں. یا اسی طرح کوئی قدر و منزلت کے لحاظ سے قریب ہو، وانتافو اقرب للتقوى، یہ سورۃ البقرہ کی آیت 237 میں استعمال ہوا ہے. اور وقت، اور ویسے قریب ہونا، وسجد وقت قریب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، تو اس طرح بھی یہ استعمال ہوا ہے. جیسے اب آپ دیکھیں کہ قیامت قریب آ گئی ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو اس طرح یہ قاف را با کا لفظ جو ہے یہ قربت کے لیے استعمال ہوتا ہے، نزدیک کے لیے، اور یہ مختلف معنوں میں اس طرح استعمال ہوا ہے. اچھا تیسرا لفظ ہے بنا کا، اور دنیا بھی آخرت کے مقابلے میں قریب ہے، اس لیے یہ لفظ دنیا کا بھی استعمال ہوتا ہے. اور چوتھا لفظ ہے حذیفہ، یہ وقت کے نزدیک ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، سورۃ نمبر 40 آیت نمبر 18. تو چونکہ قیامت کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے، تو اس لیے قیامت کا ایک نام جو ہے وہ یوم الآزِفَة بھی ہے. تو ابھی جو ہمیں سمجھنا ہے وہ ہے زلفہ، اور نزدیک ہونے کے لیے قرآن میں اس کا پانچواں درجہ ہے، ذا لام فا، درجہ اور مرتبہ میں نزدیک ہونا، درجہ اور مرتبہ میں نزدیک ہونا. اسی طرح ہم زلف جو ہے وہ بہنوئی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، ہم زلف کے پہلے جو ہے وہ دو مرد جو غیر ہوتے ہیں، کوئی تعلق نہیں ہوتا، جب دو بہنیں جو سگی بہنیں ان سے جب شادی ہوتی ہے تو آپس میں وہ ہم زلف بن جاتے ہیں، قریبی رشتہ ہو جاتا ہے، اس لیے زلفوں کو بھی کہتے ہیں. یہ ہمارے بالوں کی وہ لٹ جو ہمارے ماتھے کے قریب ہوتی ہے، ہمارے چہرے پہ آ جاتی ہے، اس کو بھی زلف کہا جاتا ہے، یعنی یہ بال ہمارے چہرے کے بہت قریب ہوتے ہیں. تو الحمدللہ. اس کے بعد آپ آئیے آیت نمبر 37 میں الغرافات لفظ استعمال ہوا ہے، اور الغرافات جو ہے یہ الغرفہ واحد ہے، الغرافات جمع ہے، اس کا مادہ ہے غین رافا، غین رافا یہ اوپر کی منزل کو کہتے ہیں، اپر سٹوری، بالا خانہ، جنت کے منازل اور درجات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو غرفہ سے مراد اعلی تعمیر شدہ اور بلند کمرہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ پیچھے آپ نے سورت البقرہ میں یہ لفظ پڑھا تھا کہ چلو بھر پانی، تو وہاں پہ آپ نے اس کو پڑھا تھا، اور وہاں پہ آپ نے اس کو پڑھا تھا کہ جب جو ہے وہ تالوت کے لشکر کا مقابلہ جو ہے وہ جالوت سے ہونے لگا، اور راستے میں بتایا کہ تمہاری جو ہے وہ آزمائش ہونے والی ہے، اور اس موقع پر انہوں نے اپنے لشکریوں کو جو نصیحت کی تھی وہ یہ کہا تھا کہ یہ ہے سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر ہے 249. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفتا بيده، یعنی ہاتھ کا کمرہ بنا کر، جیسے آپ اپنے مٹھی میں اپنے ہاتھ میں جتنا پانی آپ کے آتا ہے تو آپ اپنی انگلیوں کی دیوار بھی بنا لیتی ہے نا، ایک کمرہ کا جیسے بن گیا، تو وہاں پہ بھی غرفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. بڑا خوبصورت ہے قرآن، آپ سمجھیں تو بڑی لطف اور لذت آپ کو ملے گی. تو بہرحال الغرافات جو ہے یہ جنت کے اوپر کے منازل کے لیے یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اور جنت کے 100 درجے ہیں، تو یہاں پہ اوپر کی جو منزل ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 38 ہے اور سورۃ سبا کی، اس میں لفظ ہے محضرون کا، اور حاضر، ہا ضاد را، حاضر کرنا، اور اصل میں اس کے معنی ہیں جیسے کسی کو جو ہے وہ جمع کرنا، حاضر کرنا، جمع کرنا، اکٹھا کرنا. تو یہ ذلت اور بے بسی کی تصویر ہے مجرموں کی، کہ جہنم میں جو ہے وہ عذاب کے لیے ان کو جو ہے وہ حاضر کر دیا جائے گا. پھر آپ دیکھ لیجئے آیت نمبر 39 ہے، جو ہمارے ابھی کے روٹ ورڈ کی آخری آیت ہے، اور اس میں باسین توا، اور یہ آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے آیت نمبر 36 میں، کھولنا، پھیلانا، وسط کے معنی ہے، اور یہاں پہ یقدر جو ہے اس کا اپوزٹ آیا ہے. اور آیت نمبر 39 جو ہے اس میں وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تو خیر جو ہے یہ قسم تفضیل ہے اور بہترین کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ سب سے بہترین. اور الرازقین, الرازق واحد ہے اور الرازقین جمع ہے, اور یہ صرف جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوئی ہے, اور اس کا مادہ ہے را زا قاف رزق. تو اور وہ سب جو ہے وہ رازقوں سے بہتر رزاق ہے.